ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। संयुक्त राष्ट्र संघ की 79वीं महासभा में सहभागी होने के लिए नेपाली प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अमेरिका के लिए किया प्रस्थान। आश्विन 10 गते को प्रधानमंत्री राष्ट्र संघ की महासभा को करेंगे संबोधित। सामान्य प्रक्रिया से निराकरण न हो सके अरियर के निराकरण के लिए सरकार ने की समिति गठित। प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश और राजदूतों की सुनवाई के लिए संसदीय सुनवाई समिति ने शिकायत दर्ज कराने के लिए किया आह्वान। और पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में सुरक्षा बलों और चरमपंथियों के बीच हुई मुठभेड़ में 18 लोगों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली नेपाली प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए संयुक्त राष्ट्र की 79वीं महासभा में भाग लेने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क जाने के क्रम में दोहा कतर पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री ओली आज स्थानीय समय अनुसार दोपहर 1:35 पर हमाद अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल पहुंचे। उनका कतर नेपाली दूतावास के कार्यवाहक राजदूत कुमार राय और दूतावास के वरिष्ठ अधिकारियों ने विमानस्थल के विशिष्ट कक्ष में स्वागत किया। अमेरिका प्रस्थान करने से पूर्व प्रधानमंत्री ओली की त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल के अति विशिष्ट कक्ष में प्रतिनिधि सभा के सभामुख देवराज के मिले, राष्ट्रीय सभाध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहाल, उप प्रधानमंत्रियों विष्णु प्रसाद पोटेल और प्रकाश मान सिंह, मंत्रियों, सांसदों, नेपाल सरकार के उच्च पदस्थ अधिकारियों, सुरक्षा निकायों के प्रमुखों लगायत ने विदाई की थी। मौके पर नेपाली सेना की एक टुकड़ी ने प्रधानमंत्री ओली के सम्मान में गार्ड ऑफ ऑनर दिया था। परराष्ट्र मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री ओली इसी आश्विन 10 गते को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा को संबोधित करेंगे। महासभा की इस वर्ष की साधारण बहस किसी को भी पीछे न छोड़ना, वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए शांति, दीर्घकालीन विकास और मानवीय गरिमा के लिए एक साथ काम करना है। प्रधानमंत्री ओली इसी आश्विन 8 गते को महासभा की सामान्य बहस के उद्घाटन सत्र और आश्विन 9 गते को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा आयोजित स्वागत समारोह में भाग लेंगे। परराष्ट्र मंत्रालय के अनुसार न्यूयॉर्क दौरे के दौरान प्रधानमंत्री ओली एलडीसी के वैश्विक समन्वय ब्यूरो के अध्यक्ष के रूप में सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसके अलावा वे समुद्र के स्तर में वृद्धि से उत्पन्न अस्तित्वगत खतरे पर उच्च स्तरीय बैठक और एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध पर उच्च स्तरीय बैठक को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री ओली आश्विन 7 गते को कोलंबिया विश्वविद्यालय में नेपाल के प्रजातंत्र और आर्थिक समृद्धि की यात्रा विषय पर संबोधन करेंगे। इसके अलावा कई अन्य कार्यक्रम निर्धारित हैं। प्रधानमंत्री ओली नेतृत्व की टोली में उनकी धर्मपत्नी राधिका शाक्य, परराष्ट्र मंत्री डॉ आरजू राणा देउवा, प्रधानमंत्री के प्रमुख सलाहकार विष्णु प्रसाद रिमाल, परराष्ट्र सचिव सेवा लमसाल और नेपाल सरकार के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ओली आश्विन 14 गते को स्वदेश लौटेंगे। राष्ट्रपति रामचंद्र पोटेल ने प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में प्रधानमंत्री द्वारा किए जाने वाले दैनिक प्रशासनिक काम संभालने की जिम्मेदारी उप प्रधान एवं शहरी विकास मंत्री प्रकाश मान सिंह को सौंपी है। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र संघ की 79वीं महासभा में सहभागी होने के लिए प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने आज अमेरिका की ओर प्रस्थान किया। राष्ट्रपति रामचंद्र पोटेल के समक्ष लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष माधव प्रसाद रेग्मी ने आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन पेश किया। आज राष्ट्रपति भवन शीतल निवास में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति पोटेल के समक्ष आयोग के अध्यक्ष माधव प्रसाद रेग्मी ने आर्थिक वर्ष 2080-81 का आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन पेश किया। राष्ट्रपति रामचंद्र पोटेल के समक्ष राष्ट्रीय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन पेश किया गया। आज राष्ट्रपति भवन शीतल निवास में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति पोटेल के समक्ष आयोग के अध्यक्ष बालानंद पोटेल ने आर्थिक वर्ष 2080-81 का आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन पेश किया। संसदीय सुनवाई समिति ने प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश और दो राजदूतों के ऊपर सुनवाई के लिए शिकायत के लिए आह्वान किया है। समिति की आज हुई बैठक ने प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश प्रकाश मान सिंह राउत, बेल्जियम के लिए प्रस्तावित नेपाली राजदूत सेवा लमसाल और ऑस्ट्रेलिया के लिए प्रस्तावित नेपाली राजदूत चित्रलेखा यादव के ऊपर शिकायत के लिए आह्वान किया है। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
नेपाल टेलिकम को 4G भिडियो कल गर्दा नो बोर्जी नेपाल टेलिकम को 4G
सबैको यो विश्वास हो नि नेपाल टेलिकम को 4G
गेम खेल्दा नि टेन्सन नजी नेपाल टेलिकम को 4G आफ्नो भन्ने आफ्नै हो जी नेपाल टेलिकम को 4G
नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। प्रधानमंत्री एवं नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ने पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष की जिम्मेदारी वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल को सौंपी है। पार्टी अध्यक्ष ओली ने संयुक्त राष्ट्र संघ की 79वीं महासभा में सहभागी होने के लिए आज अमेरिका के लिए प्रस्थान करने से पहले पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष की जिम्मेदारी वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेल को दी। ये जानकारी एमाले पार्टी मुख्यालय के सचिव डॉ भीष्म अधिकारी ने दी। नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचंड ने कहा कि नेपाल को शांति क्षेत्र घोषित करने का महत्व बढ़ता गया है। जनस्तर से गठित शांति क्षेत्र अभियान का ज्ञापन पत्र लेते हुए अध्यक्ष प्रचंड ने कहा कि टकराव युक्त बनती गई विश्व राजनीति की चपेट से नेपाल को बचाते हुए राष्ट्रीय स्वाधीनता कायम करने के लिए शांति क्षेत्र के प्रस्ताव को आगे बढ़ाने का समय आ गया है। सरकार ने सामान्य प्रक्रिया से निराकरण न हो सके अरियर के निराकरण के लिए प्रतिनिधि सभा की सार्वजनिक लेखा समिति के सदस्य अच्युत प्रसाद मैनाली की अध्यक्षता में बिरुजू फरशोट समिति गठित करने का निर्णय किया है। बीते बुधवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक के निर्णयों को साझा करने के लिए आज संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्रालय द्वारा बुलाए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार के प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने ये बात बताई। उन्होंने बताया कि बिरुजू फरशोट समिति का कार्यक्षेत्र भी निर्धारित किया गया है। सरकार ने हर साल वैशाख 7 को राष्ट्रीय याक दिवस के रूप में मनाने का निर्णय भी किया है। बैठक ने आगामी कार्तिक 5 से 10 तक अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में आयोजित होने वाले विश्व बैंक समूह और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की संयुक्त वार्षिक बैठक में भाग लेने के लिए उप प्रधानमंत्री एवं अर्थमंत्री के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल को स्वीकृति देने का निर्णय किया। इसके अलावा भी कई अन्य निर्णय मंत्रिपरिषद बैठक ने किए, जिनमें काठमांडू उपत्यका पेयजल सुधार परियोजना द्वितीय के लिए एशियाई विकास बैंक से सहूलियत दर पर प्राप्त होने वाली 170 मिलियन अमेरिकी डॉलर का कर्ज और 17 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अनुदान सहायता और जापान फंड फॉर प्रॉस्परस एंड रेजिलिएंट एशिया एंड द पैसिफिक से प्राप्त होने वाली 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अनुदान सहायता संबंधी वित्तीय समझौता एवं अन्य दस्तावेजों को अंतिम रूप देने के लिए नेपाल सरकार की ओर से अर्थ मंत्रालय के सहसचिव के नेतृत्व में वार्ता टोली गठित करने के लगायत निर्णय शामिल हैं। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने कहा कि समाज के रूपांतरण में चलचित्र क्षेत्र का अतुलनीय योगदान है। संविधान दिवस के अवसर में आज चलचित्र विकास बोर्ड द्वारा आयोजित सांस्कृतिक पुरस्कार 2081 कार्यक्रम में मंत्री गुरुंग ने चलचित्र के उत्थान के लिए मंत्रालय की ओर से भरपूर सहकार्य करने की प्रतिबद्धता जताई। कार्यक्रम में चलचित्र विकास बोर्ड ने नेपाली फिल्म बलिदान को इस साल का सांस्कृतिक रूपांतरण पुरस्कार 2081 से सम्मानित किया। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री प्रदीप पौडेल ने कहा कि सरकारी अस्पताल में काम करने के समय चिकित्सक निजी अस्पताल में नहीं जा पाएंगे। आज चितवन में पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान मंत्री पौडेल ने बताया कि मंत्रालय द्वारा कुछ दिन पहले जारी की गई निर्देशिका अस्पतालों और विभाग में क्रियान्वयन के चरण में है। मौके पर उन्होंने यह भी बताया कि स्वास्थ्य बीमा को बढ़ाकर 5 लाख रूपये का करने का मंत्रालय का प्रस्ताव मंत्रिपरिषद से पारित होकर क्रियान्वयन में जाने की तैयारी में है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों और चरमपंथियों के बीच हुई अलग अलग मुठभेड़ में सेना के 6 सैनिकों और 12 चरमपंथियों की मौत हुई है। पाकिस्तानी सेना के जनसंपर्क विभाग ISPR के मुताबिक अलग अलग मामलों में सेना की जवाबी कार्रवाई में मुठभेड़ के दौरान 12 आतंकवादी मारे गए हैं। आतंकवादियों के खिलाफ ये ऑपरेशन गुप्त सूचना के आधार पर खैबर पख्तूनख्वा के उत्तरी और दक्षिणी वजीरिस्तान में चलाया गया। बयान के मुताबिक इन आतंकवादियों के पास से भारी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 31.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संयुक्त राष्ट्र संघ की 79वीं महासभा में सहभागी होने के लिए नेपाली प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अमेरिका के लिए किया प्रस्थान। आश्विन 10 गते को प्रधानमंत्री राष्ट्र संघ की महासभा को करेंगे संबोधित। सामान्य प्रक्रिया से निराकरण न हो सके अर्रियर के निराकरण के लिए सरकार ने की समिति गठित। प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश और राजदूतों की सुनवाई के लिए संसदीय सुनवाई समिति ने शिकायत दर्ज कराने के लिए किया आह्वान। और पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में सुरक्षा बलों और चरमपंथियों के बीच हुई मुठभेड़ में 18 लोगों की हुई मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।